नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जी हाँ, आपका लेसन नंबर 4 है और इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज जो हमारा लेसन है, फर्स्ट मॉड्यूल का लेसन 4 है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। मतलब जो हमारे लाइब्रेरी साइंस का एक आधार है, जिसे कह सकते एक बेस जिसे कहेंगे हम, वो है ये 5 लॉज हमारे लिए। ये किसने दिए हैं? ये डॉक्टर शैली राम अमृत रंगनाथन, इन्होंने हमें ये लॉज दिए हैं जो रहे हैं 1892 से लेके 1972 तक। तो ये इनका नाम याद रखना एज अ फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपके लिए बहुत जरूरी है। वो एक इन्वेंटर थे, एजुकेटर थे, फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन भी थे और फिर एक यूनिवर्सल लाइब्रेरियन बन गए। उनको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आया लाइब्रेरी को क्लासिफाई करने में, इसे ऑर्गेनाइज करने में, इसके डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन थे तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन स्कीम भी दी हमें, जिसे हम कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जो उन्होंने 5 लॉज बनाए वो 1928 में उन्होंने फॉर्मुलेट किए, तैयार किया उन्हें, और फिर अल्टीमेटली एक किताब पब्लिश हुई है 1931 में, जिसे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा गया। ये इनका कहना है कि इसमें जो लॉ इन्होंने, जिस आधार से ये 5 लॉ इन्होंने बनाए, उनके एक इंग्लिश के टीचर, मैथमेटिक्स के टीचर थे प्रोफेसर एडवर्ड रॉस, जिनकी वजह से इन्होंने इस काम में इंटरेस्ट लिया और ये लॉज हमारे लाइब्रेरी साइंस के लिए इंडिया में तो एकदम बैकबोन है। इसी की फिलॉसफी में, इन्हीं लॉज की फिलॉसफी से ही हम लोग जो लाइब्रेरीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें, वो ऑपरेशन एक्टिविटी जो भी हमारी लाइब्रेरीज में होती है वो इन लॉज से रिलेटेड होती है। कहीं ना कहीं हम इन लॉज से डे टू डे लाइफ में हम इनसे जुड़ जाते हैं। एक बारी जब हम लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश करते हैं, काम करते हैं, या हम डे टू डे सर्विसेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉज हमारे, कहीं ना कहीं हमें इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो हम जो ये लेसन आज पढ़ेंगे, इसमें हमने क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, और आप क्या क्या जानेंगे, पहले तो आप 5 लॉज समझेंगे, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो इस रंगनाथन जी ने दिए हैं हमें, फिर इनकी इम्प्लीकेशंस, इनका क्या फ़ायदा रहा है और क्या नुकसान रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम इनको बताएंगे ये किस तरह से गाइड करते हैं हमें, इनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के लिए, वो हमें किस तरह से गाइड करते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ और लॉज भी, टाइम के हिसाब से मॉडर्न लॉज भी बने हैं, वो भी हमने इसमें से लिए हैं। हमने बहुत ज़्यादा नहीं इंक्लूड किया है इसको, उतना ही जितना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बताएंगे, क्या चेंजेस आए इन लॉज से, हमने उन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को क्या क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया। फिर हम इम्पोर्टेंस भी बताएंगे यूज़र्स के लिए, क्या इम्पोर्टेंस है इन लॉज से। तो बेसिकली हम ये देखेंगे जो ये लॉज है हमारी लाइब्रेरी के लिए एक आधार है, इन्हें हम कैसे करते हैं। हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है, सबसे मतलब देखा जाए एक इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट है इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सबसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो आया शुरुआत से 1931 से लेकर के आज तक ये कहेंगे, तो ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है इन लॉज का लाइब्रेरी साइंस पे। ये बेसिकली हमारे लिए क्या करते हैं, फंडामेंटली जो बेसिक फिलॉसफी है लाइब्रेरी साइंस की, इसी से शुरुआत हो जाती है। यही, इसी को हम आधार समझते हैं, बेसिस बना देते हैं जिससे हम आगे काम करते हैं। देखा जाए तो इन शॉर्ट जो कहेंगे, जो सर्विसेज एक ऑर्गेनाइजेशन देती है वो इन्हीं लाइब्रेरी के लॉज को, इसी की फिलॉसफी को ध्यान में रख के हम अपने लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश करते हैं, और हम अगर कहीं गलत भी करते हैं तो हम इन लॉज को दिमाग में लेकर के चलते हैं और हमें पता चलता है कि हम इन्हें कितना फॉलो करते हैं। ये समझ लीजिए लाइब्रेरी साइंस का एक बाइबल की तरह है। तो ये पांच लॉज क्या हैं? सबसे पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, जो हम सब समझते हैं कि जब तक किताबें यूज़ नहीं होंगी, जब तक उनका इस्तेमाल नहीं होगा, उनके लिए उपयोग नहीं होगा या हम उनके यूज़र नहीं होंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। They are useless then. They should be used. Every book should have a user. Second law है हमारा every reader his book. मतलब हर कोई जो पाठक है उसकी हर किसी की किताब है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई दूसरे की चॉइस से नहीं पढ़ता, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। सो समझे तो हर पाठक की एक अपनी किताब होनी चाहिए जिसमें उसे इंटरेस्ट है। फिर थर्ड है एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब अगर किताबें हैं लाइब्रेरी में तो आप देखेंगे कई लोग एजुकेशन पढ़ेंगे, कई इंग्लिश पढ़ेंगे, कई लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, कई लोग पेंटिंग पढ़ना चाहेंगे, कई लोग मैनेजमेंट पढ़ना चाहेंगे। तो हर किताब जो है उसके लिए अलग अलग रीडर है, हर किताब को अपना अपना रीडर मिलता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, हम लाइब्रेरी साइंस के काम करने वाले लोगों के लिए या जो पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है सबसे अहम चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो है हमें टाइम सेव करना है रीडर का। कैसे हम टाइम सेव करेंगे? उनको अच्छे टूल्स दे के, उनको अच्छी गाइडेंस दे के, उनके साथ खड़े होकर के, उन्हें सपोर्ट दिखा करके, अच्छी कम्युनिकेशन दिखा के, ताकि हम उनका टाइम सेव करें। अगर वो आप देखेंगे किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो खो जाता है इंसान, पता नहीं चलता है इंसान को कि क्या ढूंढूं मैं, कैसे ढूंढूं। अगर लाइब्रेरी इस तरह से गाइडेड हो, आपके पास इतने मार्क्स लगे हुए हों कि आप इस तरफ से जाएंगे तो इस नंबर की बुक्स मिलेंगी, ये नंबर इस नंबर से रिलेटेड है, तो आपका टाइम जो है काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। या इसके लिए अगर हमें कोई सपोर्ट के लिए भी है वहाँ पर तो वो भी बहुत मैटर करता है। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी हर समय ग्रो करती रहती है, इसकी ग्रोथ कभी स्टॉप नहीं होती है। आज वही लाइब्रेरी जो हमने 30 साल पहले शुरू करी थी उसमें 1000 किताबें थी, आज उसमें 25,000 फिजिकल किताबें हैं। ई लाइब्रेरी अगर देखा जाए दीप तो उसमें और हमने 20,000 10,000 किताबें रखी। तो ये हर दिन इसमें कुछ न कुछ ऐड होता है। तो जब हम लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करते हैं इसका मतलब है हमें आगे के 10 साल 20 साल को देख के सोच के इसे इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ये आज जैसी है ये ऐसे नहीं दिखेगी। इसके लिए हमें माइंड को पहले से आउटलुक जो है अपना ब्रॉडर रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये हमारे हैं 5 लॉज, यही सिद्धांत है हमारे लाइब्रेरी साइंस के, जिन्हें कि हम एक एक करके हम समझेंगे इन सिद्धांतों को, और इन्हीं की फिलॉसफी पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइब्रेरीज की बनाई गई है। पहला हम लॉ पढ़ेंगे बुक्स आर फॉर यूज। तो बुक्स किताबें, जैसे कि हम मैंने आपको बताया, किताबों का जब तक यूज़ नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं है, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लाइब्रेरी साइंस में जो पहला रूल है बुक्स आर फॉर यूज़, तो ये एक खुद में ही एक सच्चाई है। आप देखेंगे तो ये लॉ ही इटसेल्फ बताता है हमें कि हाँ, बुक्स तो यूज़ के लिए ही होनी चाहिए। पहले ज़माने में, या मतलब समझ लीजिए 100 साल 70 साल पहले, इस तरह की लाइब्रेरीज़ का नहीं था प्रचलन। तब हम लोग ज़्यादातर एम्फेसिस होता था, ज़्यादातर जो जोर हम देते थे वो हम देते थे स्टोरेज पे, प्रिजर्वेशन पे, ताकि हमारी जो आज की सभ्यता है ये बची रहे आगे के लोगों के लिए। इस पे इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने देते थे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, बार बार ही हाथ लगेगा, टूटेगा, क्योंकि पेपर भी इस क्वालिटी का नहीं मिलता था, हम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, प्रिंटिंग इतना आसान नहीं था। आप देखेंगे तो पहले भोज पत्र पे लिखा जाता था, तो उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना भी टफ था। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लाइब्रेरी की जो रूल्स भी हैं थोड़ा थोड़ा बदलते गए। स्टोरेज और प्रिजर्वेशन रहा, वो आज भी इम्पॉर्टेंट है, मगर उस हद तक नहीं कि हम किसी को हाथ ना लगाने दें या हम ओपन एक्सेस में किताबें ना रखें जहाँ पर हर कोई आकर के किताबों को देख सकता है। लाइब्रेरीज़ को ज़्यादातर प्रिजर्वेशन में किताबों को रखा जाता था, ये पहले का एक रूल था। जहाँ तक हम आगे आगे बढ़ते गए, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ गए, हमारी आज़ादी के बाद देखा जाए तो हमने काफ़ी तरक्की की। उस तरक्की को लेकर के देखेंगे तो उसमें इतना सारा मटेरियल भी छपा, उसमें प्रिंटिंग प्रेस भी आए और काफ़ी सारी चीज़ें जो टाइप राइटर्स आए, बुक्स का छपना ज़्यादा हो गया, पेपर्स उतने ही छपने लगे, तो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा बदलता गया। अब लाइब्रेरी को क्या समझा जाता है? एक सर्विस इंस्टीट्यूशन जो सोशल इंफॉर्मेशन नीड्स जो है हमारे यूज़र्स की, जो इस्तेमाल करते हैं हमारे लोग किताबें, उनके लिए एक ये सर्विस इंस्टीट्यूशन है। मतलब हम किसी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है आपकी थीसिस के लिए, पेपर के लिए, जो भी कर रहे हैं आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी, तो लाइब्रेरी आपकी सहायता करती है इस तरह से। तो सर्विस इंस्टीट्यूशन बनने का सबसे बड़ा ये रहा क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए, इसलिए हमारे जो सोचने का तरीका था वो बदलता गया। मगर इस केस में रंगनाथन जी ने जो कहा है, डॉक्टर रंगनाथन ने कहा, प्रिजर्वेशन और स्टोरेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे आज भी देखेंगे आप, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम पुराने सारे, हम 30 साल पुराने NIS के डॉक्यूमेंट्स को हम उन्हें डिजिटाइज करना चाहते हैं, हम उन्हें डिजिटाइज करके रखना इसलिए चाहते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो। अब तरीका बदल गया, पहले हम इन्हें कीड़े मकोड़े से या जलने से, इन सब चीज़ों से बचाते थे, अब हम इनको डिजिटाइज कर देते हैं तो हमारे पास क्लाउड पे ये सेव रहता है या वेबसाइट्स पे सेव रहता है, जहाँ भी सेव करना चाहते हैं। तरीके बदल गए हैं पर बुक्स का सेम ही रहा है, बुक्स आर फॉर यूज़। जैसे कि हम कहेंगे कि एक्सेस रिलेटेड इश्यूज होते थे पहले किताबों को, क्योंकि जो भी लाइब्रेरीज थे उनके पास एक स्टोरेज ऐसी रहती थी, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो हम लोग जो अब डॉक्टर रंगनाथन की सजेशंस हैं, जो उन्होंने इम्प्लीकेशंस दी हैं, बताई हैं हमें, उसमें ये कहा गया सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, बना रहे हैं, किसी भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी को बना रहे हैं, तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? लाइब्रेरी की लोकेशन को आप ये देखिए, लाइब्रेरी इस तरह से लोकेट होनी चाहिए ताकि आपके जो यूज़र्स हैं वो उनको मिडिल में मिले, वहाँ तक बस की सुविधा हो, जो भी रिक्शा ऑटो जो भी है वो मिलते रहना चाहिए। तो ज़्यादातर पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं हार्ट ऑफ द सिटी में रखे जाते हैं, ताकि इनको बहुत ऐसी जगह ना रखे जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो। तो ये एक लाइब्रेरी लोकेशन जो है एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर एकेडमिक लाइब्रेरी को देखा जाए तो उसकी लोकेशन, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में जब लाइब्रेरी बनाते हैं वहाँ भी ये देखा जाता है, स्टूडेंट्स जहाँ से आएंगे, जहाँ पर उनका इजी एक्सेस हो और जाना आसान हो, यूज़ करना आसान हो, तो ऐसी जगह यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में बनाई जाती है। ज़्यादातर हम इसे कोशिश करते हैं ग्राउंड फ्लोर में हो, ताकि ऊपर चढ़ने में कोई आलस ना करे। आलस के अलावा अगर किसी के साथ कोई इशू भी है, उस तरह की कोई मतलब चीज़ उन्हें रोके ना लाइब्रेरी तक आने के लिए। तो एक तो दूसरी चीज़ ये है कि आसपास कोई मंदिर या मस्जिद या कोई भी इस तरह की कोई रिलीजियस चीज़ ना हो, जिसमें कि हम लोग जब वहाँ पूजा होती है या जो भी जिस रिलीजियस प्लेस में हो, वो सब डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। ये साउंड प्रूफ रहना चाहिए, ये जहाँ भी लोग पढ़ रहे हैं या जहाँ जानकारी जान लेते हैं, लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं, तो ये सब डिस्टरबेंसेस से जो है मुश्किल हो जाती है और उसमें यूसेज में भी इशू आता है। फिर नेक्स्ट जो उन्होंने इम्प्लीकेशन बताई वो है लाइब्रेरी आवर्स। अब अगर हम एकेडमिक लाइब्रेरी है तो आपके वो जब ऑफिस खुलेगा आपका तो उसके साथ जब बंद होगा उसी के साथ रहेगा, स्कूल है जब स्कूल रहेगा तो स्कूल के साथ ही खुलेगा बंद रहेगा, या अगर अब आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी में यूजुअली कम जाएंगे लोग, पब्लिक लाइब्रेरी में मोस्टली लोग तब जाएंगे जब वो अपने काम से फ्री होंगे, या वो स्कूल से छुट्टी होके आए हैं, कॉलेज से काम खत्म करके आए हैं, या वो अपना काम खत्म करके अब पढ़ना चाहते हैं रात को 8 बजे तक। तो इसलिए उस केस में आपको क्या होना चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स जो है वो मैक्सिमम हो, ताकि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, वो सबके लिए मैं हो, सब लोग पढ़ सके उन्हें, सब लोग उन तक पहुंच सके। अगर लाइब्रेरी बंद हुई तो फिर वो वहाँ वो काम नहीं कर सकते। अगर हम लोग 2 घंटा मॉर्निंग में जल्दी खोलें या 2 घंटा शाम को देर से रखें, उसमें आपका स्टाफ जो है रोटेशन में रहता है। ये नहीं कि हम एक ही पे ये सारा प्रेशर डाल सकते हैं, कि रोटेशन में रख के आप ईजिली उसे, या हर हफ्ते, एक हफ्ते में हर किसी की ड्यूटी 2 घंटे एक्स्ट्रा हो जाती है, वो एडजस्ट किया जाता है। मगर उससे लाइब्रेरी आवर्स से आपका जो यूसेज है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर थर्ड चीज़ जो है वो है लाइब्रेरी फर्नीचर। है ये बहुत छोटी सी चीज़ें पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्नीचर जो है लाइब्रेरी में जो भी आप लेंगे वो कंफर्टेबल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, बहुत चौड़ा नहीं हो ताकि बैठने की जगह कम पड़े सबको, इतना स्लीक हो ताकि आप इसे मूव करने में आसान हो, और स्टडी हो, आवाज़ ना करे, जो आपके रूम्स हैं स्टैक्स जहाँ लगे हुए होते हैं, कुछ रूम तो लाइब्रेरी में ऐसे बन जाते हैं कि 10 साल बाद आपके पास पुराने सारे बहुत सारे किताबें हो जाती हैं जो स्टैक रूम में चले जाते हैं। स्टैक रूम का मतलब हो गया जो अब नए नए किताबें आएंगी वो नई नई शेल्स में जाएंगी, और जो पुराने रहे होंगे 5-10 साल पुराने जिनका बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है तो उसको स्टैक रूम में रखते हैं। वो स्टैक रूम को आपको इंसेक्ट प्रूफ रखना, वर्मिन प्रूफ रखना, चोरी ना हो उसमें, और हवा अच्छी रहे, साफ रहे, खुला रहे, ताकि उसमें जो कीड़े वीड़े ना रहे, ये सब चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। इस तरह से जो आप देखेंगे बेस्ट रीडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। एक क्या इसमें बेस्ट रीडिंग फैसिलिटी में आपको अपने यूजर्स के लिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट लाइट्स हो, फैंस हो, एसी हो, या आपका जो फ्लोर है वो साउंड प्रूफ हो। जब आप चल के आएंगे, कोई पढ़ रहे होंगे तो अगर आपके चप्पल की या जूते की आवाज़ आएगी टक टक, तो दूसरा इंसान जो पढ़ रहा होता है, यूज़र जो काम कर रहा होता, तो उसके लिए वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो इस तरह से हम जो फ्लोर भी करते हैं वो भी साउंड प्रूफ बनाते हैं। वहाँ पर जो लाइब्रेरी की आप किस तरह की लाइब्रेरी है ये भी देखना पड़ता है। अगर आपके बच्चों से रिलेटेड लाइब्रेरी है तो आप नीचे बैठने का भी उसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, या लो हाइट की चेयर्स हों, लो टेबल्स हों, छोटे छोटे टेबल्स हों। तो जिस तरह की भी लाइब्रेरी है या किस तरह का क्लाइंट आप सर्व करते हैं, जैसे स्कूल लाइब्रेरी है तो वहाँ पर भी बहुत छोटे बच्चे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं, तो बहुत छोटे बच्चों के लिए आपके लो हाइट का फर्नीचर होना ज़रूरी है, कंफर्ट होनी ज़रूरी है, और बड़े बच्चे जो हैं उनके लिए भी अलग से होना चाहिए। तो इस तरह में आपको जो लाइब्रेरी फर्नीचर है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है आपकी लाइब्रेरी रिसोर्सेस को यूज़ करने में। जो हाइट है बुक रैक्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई, जैसे अगर स्कूल लाइब्रेरी है आपका प्राइमरी लेवल तक का, तो बहुत ही लो हाइट पे आपकी बुक्स होनी चाहिए, मतलब 3-4 फीट से ज़्यादा हाइट ना हो, ताकि वो वहाँ तक हाथ से अपने बुक्स ले सके, टॉप मोस्ट शेल्फ तक पहुंच सके। नहीं तो हम एक कोई एक स्टेप टाइप का होता है, 2-3 स्टेप्स होते हैं, बहुत स्टेबल सा लेना पड़ता है ताकि वो उस पर चढ़ के उसे यूज़ कर सकते। तो जो नॉर्मल हाइट के लोग हैं उनके हिसाब से ही फर्नीचर भी, कंफर्ट भी देखा जाता है, और स्टैक्स को भी देखा जाता है। इसके बाद हो गया बुक सिलेक्शन, जो उसका फोर्थ इम्प्लीकेशन है। बुक सिलेक्शन तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इम्प्लीकेशन है। हमें किस बेस पे बुक सिलेक्शन करना है, हमें ये देखना है अगर हमारे स्कूल लाइब्रेरी है तो हमारी नीड्स क्या है, बच्चों की ज़रूरतें क्या है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुक का सिलेक्शन करेंगे। ना कि अगर हम कॉलेज लाइब्रेरी में हैं तो बच्चों की तरह बुक्स करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में नहीं फिट बैठेंगी। तो इस तरह से बुक सिलेक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपके जो यूज़र्स हैं, पोटेंशियल यूज़र्स हैं, वो ताकि उन्हें यूज़ करें। अगर हमने गलत सिलेक्शन किया तो यूसेज नहीं होगा। हमें फिजिकल अपेयरेंस को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो भारी बड़ी बड़ी किताबें नहीं ले सकते हैं, वो उठा नहीं पाएंगे उनको। तो बच्चों के लिए पॉकेट बुक्स, छोटी बुक्स, लाइट बुक्स, 500 पेजेस तक की हो तो जो हैंडलिंग में ईजी हो। अगर फिर वहीं पर हम उनको क्लीन रखना, उनकी अच्छी कंडीशन में रखना उनको, या वोन आउट या ऑब्सलीट बुक्स जो हो गई हैं, जो पुरानी किताबें हो गई हैं, उन्हें अलग करना, ये सब हमारे उसमें बुक सिलेक्शन में और लाइब्रेरी की सिलेक्शन में अपडेशन में ज़रूरी हैं ये सारे पॉइंट्स। इसके बाद हम लाइब्रेरी स्टाफ पे आएंगे। तो लाइब्रेरी स्टाफ का क्या रोल है? अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है तो आप ये सब काम कर ही नहीं सकते हैं। चाहे आपके पास लाइब्रेरी आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा भी रखें, आप फर्नीचर जितना मर्जी अच्छा रखें, बुक सिलेक्शन कितना भी अच्छा हो, पर लाइब्रेरी स्टाफ एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी नॉलेज को डिसेमिनेट करने के लिए। आपने जो लाइब्रेरी बनाई है, लाइब्रेरी में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं आपके, उन्हें आप यूज़र्स तक कैसे पहुँचाएँगे, उनका मैक्सिमम यूज़ कैसे होगा, वो सिर्फ आप में जो लाइब्रेरी में जो काम करते हैं हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग हों, अच्छे लोग हों, जिन्हें इस बात की पता हो कि कम्युनिकेशन लाइब्रेरियंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उस तरह के सॉफ्ट स्पोकन लोग हों, अच्छी लैंग्वेज बोल सकते हैं और कैसे ट्रीट करें पब्लिक को, वो भी ज़रूरी है, वो भी आना चाहिए। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइब्रेरी स्टाफ को हम कैसे लें, किस तरह, किस बेसिस पे सिलेक्ट करें। ये भी है कि अगर स्कूल लाइब्रेरीज के लिए लेना है तो हमें किस तरह की क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, और या हमें कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोअर पोस्ट की ज़रूरत है, हायर की नहीं है, ये सब चीज़ें माइंड में हमें रखनी पड़ती हैं। क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोअर स्टाफ बच्चों के साथ किताबें निकाल के देना, रखना, ये सब करना, वो सब वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ये भी है कि वो लोग ये भी समझे कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, या यूज़र जो भी है, जिस तरह का यूज़र है, उनको रिसोर्सेज कैसे हम उन तक पहुँचाएं, वो हमारे रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करेंगे। ज़रूरी जो टास्क है लाइब्रेरीज़ का वो है, लाइब्रेरी स्टाफ जो है आपका, वो अपने रीडर्स को जाने, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपने रीडर्स को नहीं जाना कि उन्हें किस तरह की ज़रूरतें हैं, तो उसके बिना आप फिर बुक्स या कलेक्शन जो भी लाइब्रेरी का होगा, या जो भी आप रेफरेंस सर्विसेज देना चाहेंगे, वो आप उनको उतना एडुकेट नहीं दे पाएंगे, उतना अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे, अगर आप अपने यूज़र्स को नहीं समझेंगे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी कलेक्शन को भी बनाएंगे। तो इसके बाद सेकेंड लॉ जो है हमारा, वो है एवरी बुक एवरी रीडर हिज बुक। हर कोई जो रीडर है उसकी अपनी एक किताब होनी चाहिए। उस की किताब का मतलब ये है कि जो हमारे पास लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, वो हर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कहाँ तक पहुँच सकता है और किसकी इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, कौन क्या यूज़ करना चाहता है। तो ये लाइब्रेरियन का यहाँ पर एक दायित्व बन जाता है कि सेकेंड लॉ को अच्छी तरह से समझे। सेकेंड लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम देते हैं बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स को, इंडेक्सिंग को, एब्स्ट्रैक्टिंग को, और बाकी सर्विसेज जो एज़ पर रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी गई है सेकेंड लॉ में, वो दी गई है टूल्स को। जो टूल्स हम लाइब्रेरी कैटलॉग के जैसे हैं हमारे पास, अगर हमने बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स अपनी सारी बुक्स की बनाई है, डाली है, पहले तो हम फिजिकल बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे, कार्ड्स को एक कैटलॉग कैबिनेट में रखा जाता था और वहाँ पर उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता था, ऑथर से, टाइटल से, या हम लोग इस क्लास नंबर से भी करते थे। उसके अलावा हमारे पास एक वो सब्जेक्ट एंट्रीज भी होती है, जैसे कि एक किसी भी टाइटल में हम दो तीन तरह के सब्जेक्ट्स भी दे देते हैं जो को रिलेटेड हो, जो आसपास एक दूसरे को जैसे अगर मुझे एकदम से याद नहीं आया ऑथर कौन है इसका, टाइटल क्या है इसका, तो मगर मुझे कुछ हल्का सा सब्जेक्ट नज़र याद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी किसी भी तरीके से। इस तरह से हम लोग फिजिकली कार्ड्स को अरेंज करते थे कि अगर टाइटल से समझ आया तो टाइटल से गए, ऑथर से समझ आया ऑथर से, अगर हम नहीं समझ पाए तो सब्जेक्ट के थ्रू भी गए, तो वहाँ पर भी हमें सारी डिटेल्स मिलती थी। तो एक बुक के 6-6 7-7 कार्ड्स बनते थे पहले, अभी तो ये चेंज हुआ है, मगर सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमें कहता है बिब्लियोग्राफी इंडेक्सिंग करना, मतलब इन सब डिटेल्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना। और अल्फाबेटिकली अरेंज करें, जैसे एक सब्जेक्ट की आपके पास 1000 किताबें हैं, 2000 किताबें हैं, उन्हें अरेंज करना अल्फाबेटिकली, वो हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में नहीं, अंदर से नहीं अरेंज कर पाएंगे किताबों को, तो उसको रिट्रीव करना, उस इन्फॉर्मेशन को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैटलॉग जो है समझ लीजिए एक तरह से की है उसकी यूजर्स के लिए। वो सेकेंड लॉ ये डिमांड करता है हमारा कि जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इस तरह की नेचर के होते हैं कि अगर आपने बुक का टाइटल पढ़ा तो पर आप ये नहीं समझ पाएंगे इस बुक के अंदर क्या है, आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइब्रेरियन जो भी होगा वहां पर, वो उसके लिए क्या करेंगे, उनकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स को निकालेंगे, उसकी इंडेक्सिंग करेंगे। एब्स्ट्रैक्टिंग भी करते हैं बहुत सारी अच्छी और बड़ी लाइब्रेरीज, उससे क्या हो जाता है कंटेंट को थोड़ा कंडेंस कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो ये सारी बेसिकली एक तरह की है जो हम यूज करते हैं लाइब्रेरी में एंटर होकर के और लाइब्रेरी तक पहुंच के इन बुक्स को रिट्रीव करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे सेकंड जो लॉ है, एवरी रीडर हिज बुक। तो ये रंगनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए, फर्स्ट लॉ के कॉन्सेप्ट को जो है उसका है प्रिजर्वेशन, किताब को आप संभाल के रखिए, बुक्स आर फॉर यूज। तो सेकेंड लॉ यहाँ पर क्या करता है, बुक्स आर चूजन फॉर फ्यू, वो कहता है कि जो किताबें हम खरीदते हैं ये किसी किसी के लिए, पर्टिकुलर एक इंसान के लिए किताब खरीदी जाती है देखा जाए, क्योंकि सबकी चॉइस एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ये लॉ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ जो है हमारा वो बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, और जो सेकंड लॉ है हमारा वो यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। पहले वाले में ये कहा गया कि बुक्स को प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन तक चली जाए, ये सब देखा गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। सेकंड में ये कहा गया कि यूजर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइब्रेरी में और उनके लिए आपने क्या क्या किया है। और इम्प्लीकेशन जो है सेकंड लॉ में जो हम देखते हैं वो है स्टेट पे क्या है, लाइब्रेरी अथॉरिटी क्या है, लाइब्रेरी स्टाफ और रीडर्स के लिए क्या है। स्टेट का कह रहे हैं जो ऑब्लिगेशन है वो है लाइब्रेरी सिस्टम और डेवलपमेंट जो भी है, प्रॉपर लाइब्रेरी बनाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके फंड्स का पूरा इंतजाम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टेट की। क्योंकि आप जो पब्लिक लाइब्रेरीज बनाते हैं वो कहीं से फंड्स आप नहीं चूज करते, वो आपको स्टेट ही फंड देते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बनाना, थ्रू लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है हम लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके पॉलिसीज क्या होंगे, डिसीजंस क्या होंगी, किस तरह का सेस लिया जाएगा, किस तरह से हम जो है फंड्स को अरेंज कर पाएंगे, ये सब चीज़ें जो है हमारी फर्स्ट इम्प्लीकेशन है और जो स्टेट पे आती है। तो लाइब्रेरीज और स्टेट में जो है आपस में इंटीग्रेट करके सेंटर लाइब्रेरी या जो भी बॉडीज बनाती हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है, इन सब के लिए कुछ कुछ चीज़ें रिकमेंड की गई हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए। वो क्या है, वो है यूनियन लाइब्रेरी एक्ट, नेशनल लाइब्रेरी लॉ और फाइनेंसेस, ये चीज़ें जो हैं इनका प्रोविजन होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड जो है हमारी ऑब्लिगेशन वो है लाइब्रेरी अथॉरिटी पे, लाइब्रेरी अथॉरिटी क्या है, चॉइस ऑफ बुक्स, सिलेक्शन ऑफ बुक्स जो भी है वो डिमांड करता है यूजर्स पे, आपके यूजर कैसे हैं उसी तरह से सिलेक्शन ऑफ बुक्स हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप उस तरह से सिलेक्शन नहीं करेंगे आपका जो कलेक्शन बिल्टअप होगा वो अगर उस कम्युनिटी को सर्व नहीं कर पाएगा जिसके लिए आप काम करते हैं तो वो सही नहीं होगा। तो इस तरह से वो एक इम्पॉर्टेंट है चॉइस ऑफ द बुक्स। फिर चॉइस ऑफ द स्टाफ, सिर्फ किताबें ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टाफ का रखना और उनके उनका रिक्रूटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अच्छा स्टाफ रिक्रूट किया तो मतलब आप समझ लीजिए आधी आपकी जो है प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती, क्योंकि बेसिकली अगर लोग अच्छे काम करने वाले मिलते हैं आपका आप सेटिस्फाई रहते हैं, तो लाइब्रेरी के जो रिक्वायरमेंट्स से बुक्स को ध्यान खरीदना, उसके बाद उन बुक्स की अच्छी तरह से देखभाल करना, बुक्स की लोकेशन ठीक ठाक रखना, मटेरियल को जब जिसने जो चाहा उसे मिल जाए उस समय पे, उनका टाइम ना बर्बाद हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो स्टाफ भी काफ़ी हद तक इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ऑब्लिगेशन भी है स्टाफ पे। स्टाफ की ऑब्लिगेशन क्या है, किसी भी तरह की जो लाइब्रेरी है जहाँ पर ये देखा जाए, कहते हैं कि सेकेंड लॉ तब तक अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं अचीव कर सकता है जब तक आपके पास अच्छा लाइब्रेरी स्टाफ नहीं हो। हाँ, वो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं लाइब्रेरी स्टाफ को अडाप्ट करना, अपना एटीट्यूड या प्रैक्टिस में हर चीज़ को लाना, ताकि हमारी जो रीडिंग मटेरियल है वो इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए। खाली ये नहीं है ड्यूटी आपकी लाइब्रेरी की, स्टाफ को दे मस्ट इंश्योर द रीडर्स गेट द मटेरियल ऑफ देयर इंटरेस्ट। जैसे कि खाली आपने जो मटेरियल रखा है वहाँ पर वो है और उससे आपको लेना देना नहीं है, पर आपका जो सेकेंड लॉ कहता है वो है एवरी बुक इज रीडर, मतलब आपके इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं, जिसका जो इंटरेस्ट का है उसे वो मिलना चाहिए, उसको वो सब ढूंढने वूंढने में टाइम का बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो अपने रीडर को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और किताबों के बारे में एडुकेट, मतलब काफ़ी सारी नॉलेज रखते हैं, अगर मुझे अपनी लाइब्रेरी में क्या क्या है, किस तरह का कलेक्शन है और किस तरह से मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, तो जितना मैं उसमें घुसी हुई हूँ जो एज अ लाइब्रेरियन, उतना ही फ़ायदा होगा मेरे यूज़र्स का, मेरे जो भी रीडर्स होंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम को नहीं फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, हम उससे ध्यान से देखा होगा तो आधी प्रॉब्लम्स उनका ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो वो सही किताब तक भी पहुंच पाएंगे और किताब को भी सही यूज़र मिल जाएगा, और दूसरा उनका जो टाइम है वो भी बचेगा, जिसमें हम लोग बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स भरते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग करते हैं, वो टूल्स लाइब्रेरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सेकेंड लॉ जो है लाइब्रेरी साइंस का, इसको काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस देता है, रेलिवेंस दिखाता है कि आपका जो कैटलॉग है वो कंटेंट को, जो अंदर लाइब्रेरी बुक्स के अंदर जो कंटेंट छुपा हुआ होता है उसको हम कैसे दिखाएंगे अपने यूज़र्स को, मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करवाएंगे, वो वही है उसी से जब हम एनालिटिकल एंट्रीज करते हैं, हम जब अलग अलग तरीके से उस बुक तक पहुंचते हैं, एक नहीं हम पचासों तरीकों से कोशिश करते हैं उस बुक तक यूज़र पहुँचे, तो हम लोग इस लॉ को काफ़ी हद तक फुलफिल करते हैं। इस लॉ में ओपन एक्सेस का होना बहुत ज़रूरी। ओपन एक्सेस तो हम ये कहेंगे कि जैसे पहले किताबें अलमारी में, ताली चाबे में बंद रहते थे, वो नहीं होना चाहिए। इस लॉ में ये है कि आपकी किताबें ओपन में हो, अगर मैं इस बुक से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं दूसरी पे चली जाऊँ, फिर तीसरी पे चली जाऊँ या दूसरी कबर्ड में चली जाऊँ। अगर हर किसी कबर्ड में ताला होगा, हर शेल्फ में ताला होगा, तो ये एक फर्स्ट स्टेप ही मेरा रोक लेता है, क्योंकि मुझे जा करके पहले बोलना पड़ेगा इसका चाबी दे दो, वो खुलेगा नहीं खुलेगा, फिर वो किताब मिलेगी नहीं मिलेगी उसमें, तो वो जो फर्स्ट स्टेप है वहीं पर हम लोग थोड़ा डिस्करेज कर लेते हैं अपने यूज़र को। तो इसलिए ओपन एक्सेस इसमें रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारी बुक्स में जो अगर यूज़र्स ने बुक्स 10 भी निकाली और एक यूज़ हुई, वो उन्हें वापस नहीं रखेंगे, उन्हें फाइल ना करें, उन्हें टेबल पे छोड़ दें एज इट इज़, वो हम खुद कर लेंगे, उस तरह से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा हो जाता है और जो हमारा लॉ है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर बुक को उसका रीडर मिल जाता है। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये कहेंगे कि सेकेंड लॉ ने रीडर्स के ऊपर भी इम्पोज की है। सेकेंड लॉ ये कहता है, ऑब्लिगेशन जो है टुवर्ड्स रीडर है, कि वो जो थोड़े बहुत जो लाइब्रेरी के रूल्स हैं, अब पहले से रूल्स में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, पहले तो हम अभी तो सोफे हैं, आराम से रह सकते हैं आप, आपको ऑडियो वीडियोस भी दे सुन सकते हैं, हेडफोन्स एयरफोन्स ये सब आपको लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, या आपको अगर देखने में इशू है बहुत जगह पर लेंसेज रख जाते हैं, या एक चश्मा एक तरह का रीडिंग ग्लासेस भी दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने यूज़ किया तो इनका प्रॉपरली यूज़ करके, इस्तेमाल करके इन्हें वापस रखा जाए अपनी जगह पर, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी आके इन्हें यूज़ कर सकते। रीडर्स का ये है, कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, शोर नहीं मचाना, या किताब के बीच में से पेजेस ना फाड़ें, या उनको पेन मार्क ना करें, या आप एयर मार्क ना करें, कान जब मतलब पेपर के कोने से फोल्ड कर करके उसे ना करें। तो वो रीडर्स को भी इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड लॉ जो है वो रिकमेंड्स दैट द लाइब्रेरीज ऑफ कंट्री रीजन कॉर्पोरेट विथ ईच अदर एंड वर्क इन ए सिंगल सिस्टम। सभी लोग, जैसे कि हमने कहा कि इसकी ऑब्लिगेशन तो आपके स्टेट पे भी है, इसकी ऑब्लिगेशन आपके इंटर स्टेट, वो सेंटर और स्टेट आपस में मिल के रेगुलेट करके फंड्स को पूल इन करते हैं, नॉलेज को पूल इन करते हैं, या कभी कभी हम लोग एक कंसोर्शिया बनाते हैं, कॉर्पोरेट्स बनाते हैं, ताकि जो सारे जो पैसे भी है उसका भी नुकसान न हो और सब लोगों तक आराम से ये सब हम जो इन्फॉर्मेशन खरीद रहे हैं, पैसे जिस पे खर्च कर रहे हैं, वो कॉमनली सबके लिए यूज़ हो जाए। तो ये हमारा था सेकंड लॉ। तो आज हमने जो कवर किया है इसमें दो लॉज कवर किए हैं, फर्स्ट लॉ बुक्स आर फॉर यूज़ एंड सेकंड लॉ एवरी बुक हिज रीडर, ताकि जो हर एवरी रीडर हिज बुक, जो हर कोई पढ़ने वाला इंसान है उसके लिए एक पर्टिकुलर बुक लाइब्रेरी में मौजूद होती है। थैंक यू।